लुका अध्याय 10। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और लोगों को काम दिया। जिस जिस नगर और जगह वह खुद जाने वाले थे, वहां उन्हें दो दो करके अपने से पहले उन्हें भेजा। यीशु ने उनसे कहा,
पके खेत बहुत हैं, लेकिन काम करने वालों की कमी है। इसलिए खेत के मालिक से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना रास्ते में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले उस घर की शांति के लिए प्रार्थना करो। अगर वहां कोई शांति के योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आएगी। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी जरूर ही मिलनी चाहिए। घर घर मारे फिरते ना रहना। जिस जगह जाओ और लोग तुम्हारा स्वागत करें, जो कुछ तुम्हारे सामने रखें वही खाओ। वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। लेकिन जिस जगह तुम जाओ और वहां के लोग तुम्हें ना अपनाएं, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ रहे हैं। फिर भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे लिए यही है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उस दिन उस नगर की हालत से सदोम की हालत ज्यादा सहने लायक होगी। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो शक्ति के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन बदल लेते। लेकिन इंसाफ के दिन तुम्हारी हालत से सूर और सैदा की हालत ज्यादा सहने लायक होगी। हे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओगे? तुम तो अधोलोक तक नीचे किए जाओगे। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें ठुकराता है वो मुझे ठुकराता है। जो मुझे ठुकराता है वो मेरे भेजने वाले को ठुकराता है।
वह 70 खुशी से वापस लौटकर कहने लगे,
हे स्वामी, आपके नाम से भूत प्रेत हमारे गुलाम हैं।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और दुश्मन की सारी ताकत को तोड़ने का अधिकार दिया है। तुम्हें किसी चीज से नुकसान नहीं होगा। फिर भी इससे खुश ना हो कि भूत प्रेत के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण है, लेकिन इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं।
उसी क्षण यीशु पवित्र आत्मा में होकर खुशी से भर गए और कहा,
हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। पिता को छोड़ और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है, केवल पिता। बेटे को छोड़ किसी को नहीं मालूम कि पिता कौन है, और केवल उस जन पर जिस पर बेटा उन्हें प्रकट करना चाहे।
यीशु ने पीछे मुड़कर अपने शिष्यों से अकेले में कहा,
वे आंखें आशीषित हैं जो वे सब देख रही हैं जो तुम देख रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम देख रहे हो और तुम सुन रहे हो, वो सब बहुत से राजा और नबी देखना मांगते थे, लेकिन ना सुन सके और ना देख सके।
तुरंत एक शास्त्री ने यीशु को परखते हुए कहा,
हमेशा का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
यीशु ने कहा,
नियम शास्त्र में क्या लिखा है? तुम पढ़ते कैसे हो?
शास्त्री ने जवाब में कहा,
तुम अपने दिल, जान और ताकत से प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखो, और जितना खुद से रखते हो दूसरे लोगों से भी और अपने पड़ोसी से भी।
यीशु पलट कर बोले,
तुमने सही जवाब दिया है। जाओ, ऐसा करते हुए जीवन बिताओ तो हमेशा जियोगे।
लेकिन उसने अपने आप को धर्मी दिखाने की इच्छा से यीशु से पूछा,
पड़ोसी का क्या मतलब है?
यीशु ने उत्तर दिया,
एक पुरुष यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। कि अचानक डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके कपड़े उतारे, मारा, पीटा और घायल छोड़ दिया। उसी रास्ते से एक याजक गुजरा, लेकिन उसने अनदेखी कर दी। एक लेवी भी वहां से गुजरा, लेकिन उसका भी वही रवैया था। एक सामरी समाज का व्यक्ति भी वहां से होकर जा रहा था, लेकिन वो तरस से भर गया। उसने उसके घाव की मलहम पट्टी की और अपने गधे पर बैठाकर धर्मशाला में लाकर उसकी सेवा की। अगले दिन वहां से जाते समय उसने धर्मशाला वाले को 2 दिनार देकर उसकी सेवा करने को कहा, ये भी कि बाकी पैसा वो लौटने पर चुका देगा। तुम्हारे ख्याल से इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जख्मी व्यक्ति का पड़ोसी साबित हुआ?
वह बोला,
वही जिसने उसकी मदद की।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ तुम भी ऐसा करो।
जाते समय रास्ते में एक गांव मिला जहां मार्था नामक एक महिला ने यीशु को अपने घर में ठहराया। तब ही मार्था की बहन मरियम यीशु की बातें सुनने में लीन हो गई। मार्था आओ भगत करते करते थक गई और यीशु से कहने लगी,
मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही है, उससे कहिए कि वो मेरी मदद करे।
लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
मार्था, हे मार्था, तुम बहुत सी बातों के लिए फिक्र करती रहती हो, लेकिन कुछ बातें हैं, सच पूछो तो एक ही बात बहुत जरूरी है। मरियम ने उस सबसे बड़े हिस्से को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा।